ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं, प्रभु प्रिय आत्माएं इस महासम्मेलन में पधारे हैं, तो मेरे तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी अभी आप सबने गीत सुना, ज्योति बिंदु परमात्मा से, ए मेरी आत्मा तू कर ले मिलन। तो ज्योति बिंदु परमात्मा से आत्मा का मिलन, ये राजयोग है, यही सच्चा मेडिटेशन है। और इसकी इससे प्राप्ति क्या होगी? परमानंद का अनुभव कर ले तू, हो जा मन में मगन। तो मन में मग्न होने से कैसे परमानंद का अनुभव हम कर सकते हैं, वो राजयोग हमें सिखाता है। तो कल और परसों आपने बहुत अनुभवी बहनों से अपने राजयोग के विषय में सुना, और हर सत्र में आप अभ्यास भी कर रहे हैं, जिसके आधार से आप ये समझ तो गए होंगे कि राजयोग हम कैसे करते हैं। फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। योग शब्द युज धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जैसे योग के का विरुद्ध शब्द है बिछड़ना, वियोग, अलग होना, दूर जाना। उसकी भेंट में योग का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, एक होना। और एक हिसाब से हम सभी योगी हैं, क्योंकि जिसको भी हम याद करते हैं उसके साथ हमारा योग है। तो योगी तो हम सभी हैं, क्योंकि मन सदा कुछ न कुछ सोचता रहता है, और जिसके विषय में सोचता है उसके साथ योग हो जाता है। तो मन वो ऊर्जा है जो हमको, चाहे व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटना, स्थान, परिस्थिति, उसे मिलन का अनुभव कराता है। परंतु यह मन परमात्मा में लग जाए, इसके लिए यही शिकायत है कि मन लगता नहीं। और बातों के लिए कभी नहीं शिकायत होगी कि मन लगता नहीं, लेकिन परमात्मा में मन लगाने के लिए चाहे हम प्रयास भी कितना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप तप हवन तीर्थ यात्राएं बहुत कुछ करते हैं, प्रार्थना अर्चना, कई वैरायटी रूपों से हम जो कुछ भी ईश्वर अर्थ करते हैं, यही लक्ष्य है कि मन उनमें लग जाए। लेकिन फिर भी यही शिकायत है। तो मन वैसे तो लगना सहज होना चाहिए, क्योंकि कदम कदम पर हम मिलन का अनुभव करते ही रहते हैं। वस्तुओं का भी मिलन है, और जिससे मिलन होता है उसका अनुभव होने लगता है। बिजली घर से मिलन हुआ, तार जोड़ी, करंट मिलने लगता है। रेडियो ऑन करके ट्यूनिंग की, वो रेडियो स्टेशन की आवाज़ मिलने लगती है, तो वो योग तो हम प्रकृति में देखते ही रहते हैं, मन से भी हम मिलते रहते हैं। लेकिन जब यह मन परमात्मा में लग जाए, ये तो ऊंचे से ऊंचा मिलन है। इसलिए इसी योग को हम राजयोग कहते हैं। और राजयोग हम कैसे करते हैं, इस विश्वविद्यालय में कैसे सिखाया जाता है, वो आज हम थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, कई प्रकार के विचार हैं मेडिटेशन के बारे में, अलग अलग डेफिनेशंस दी जाती है मेडिटेशन के बारे में। तो राजयोग भी एक मेडिटेशन है। कुछ लोग समझते हैं कि मेडिटेशन करना माना अपने विचारों को शून्य बनाना, ब्लैंक, मन को ब्लैंक बना देना। और पतंजलि ने तो यहाँ तक किया कहा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध, सप्रेशन ऑफ थॉट्स, ब्लैंकनेस, मन कुछ भी न सोचे। लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि मन का तो काम ही सोचना है, क्यों यह लक्ष्य रखते हैं कि मन कुछ भी न सोचे? क्योंकि यही समझ लिया है कि मन तो पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह है, और वो तो बेलगाम दौड़ता है, इसीलिए उसको रोकना यही मेडिटेशन है। अब घोड़े का तो काम ही दौड़ना है, आप उसको केवल बिठा देंगे तो उसकी जो पोटेंशियलिटी है उसको भी आप रोक रहे हो। तो मन भी घोड़े की तरह जरूर है, लेकिन अगर उसको सही लगाम मिल जाए तो घोड़े को दिशा दी जा सकती है। तो मन रूपी घोड़े को अगर बुद्धि रूपी लगाम मिल जाए, वो लगाम से वो घोड़ा ईश्वर तक भी जा सकता है। क्योंकि मन ही वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो ईश्वर से भी मिलन मनाने का अनुभव कराती है। इसीलिए भगवान के महावाक्य है, अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ, इस मन को मेरे में लगाओ, और इस राजयोग के द्वारा मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो मन अगर ईश्वर में लग जाए तो हम राजा बन जाते हैं। राजा माना पहले अपने इंद्रियों का राजा, फिर अपने मन का राजा, जो सोचना चाहे वही सोचे, फिर सबके दिलों का राजा, सबका दिल जीत सको, विन एवरीवन्स हार्ट, और फिर सारे विश्व का भी महाराजा महारानी, जो भारत की संस्कृति है, नर में नारायण छिपा हुआ है, नारी में लक्ष्मी छिपी हुई है, नर नारायण बन सकता है, नारी लक्ष्मी बन सकती है, मानव इतना ऊंचा देव बन सकता है, विश्व पर भी राज्य कर सकता है, स्वर्ग का भी अधिकारी बन सकता है। ये बहुत ऊंची बात है, लेकिन उसके लिए पहले है मन को जीतना। पर मन जीतने का मतलब ये नहीं है मन को मारना, क्योंकि मन कोई दुश्मन नहीं है, मन कोई ऐसा वैरी नहीं है जिसने हमको दुखी किया है। मन तो संकल्प करने की शक्ति है, और मन सुख दुख का अनुभव तो करता है, दो सब मन की स्थिति है, सुख और दुख क्या, यह मन की स्थिति है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। परंतु मन जीतने का मतलब मन को मारना नहीं, लेकिन मन को जीतना माना मन को ऐसा अपना मित्र बना देना जो सहज मन ईश्वर में लग जाए। उसके लिए क्या सोचे, तो दमन नहीं करना है, लेकिन मन में शांति लाने के लिए मन को सुमन करना है। सुंदर विचार मन को देने से मन परमात्मा में लग सकता है। इसलिए कई मेडिटेशन को उस रूप में भी समझते हैं कि सुंदर सुंदर विचार अगर मन में आते हैं वो भी मेडिटेशन है। तो एक तरफ कहते हैं बिल्कुल ब्लैंक बन जाना, और दूसरी तरफ कहते हैं सुंदर विचार लाना ये भी मेडिटेशन है। अब हम इसका मिडिल पाथ लेंगे, क्या सोचे, केवल सुंदर सुंदर विचार तो बहुत हो सकते हैं, तो मारना भी नहीं है मन को, पर मोड़ना है, और मोड़ करके ईश्वर में लगाना है, डाइवर्शन चाहिए। इसलिए मन को ब्लैंक बनाना ये राजयोग नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि डाइवर्शन देना माना फोर्स देना, वो भी नहीं है। नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है, माँ बाप सारा दिन उनको ही याद करता है बच्चा, उसके लिए वो फोर्स तो नहीं करता। स्कूल जाता है टीचर की याद उसको नेचुरल रूप में आती है, फोर्स तो नहीं करता। जो भी संबंध है वो नेचुरल रूप में आते हैं याद, फोर्स करके हम याद नहीं करते। इसी प्रकार परमात्मा से भी हमारे अनादि अविनाशी संबंध है। प्रार्थना में तो हम यही कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सब संबंध ईश्वर के साथ है, लेकिन क्यों नहीं वो संबंध ईश्वर से जुड़ा? वास्तव में अनादि अविनाशी संबंध है। हर जन्म में हमने यही प्रार्थना की है, सभी धर्मों में भी है किसी न किसी रूप से, क्योंकि परमात्मा को तो चाहे ईश्वर को प्रभु को याद तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो अनुभूति उनसे क्यों नहीं होती? जरूर कहीं कनेक्शन कट गया है, उस कनेक्शन को फिर से जोड़ना होगा, और ये विधि यहाँ बताई जाती है। इसलिए फोर्स करने की बात नहीं है, कनेक्शन जोड़ने का सही तरीका चाहिए, तो फिर इतना सहज हो जाता है। जो हम सोचते कि ये कैसे मन लग गया, कहाँ लगता नहीं और कहाँ अभी मन हटता नहीं, ऐसे अनुभव होने लग सकता है। इसीलिए फोर्स की तो बात ही नहीं है। कई कहते हैं कि मेरा मन लगता ही नहीं क्योंकि बहुत स्पीडी है, बहुत शास्ती सोचता, तेज है स्पीड हमारे विचारों की। हम कहते हैं इसका मूल कारण क्यों इतनी स्पीड है हमारे विचारों की, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग बहुत है। वो जो नेगेटिव नकारात्मक सोच जो मन में चलते हैं वो इतने स्वाभाविक हो गए हैं, जो मन बहुत फास्ट चलता है। पॉजिटिव थॉट्स लाने में हमें मेहनत लगती है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स स्लो चलेंगे, नेगेटिव थॉट्स बहुत बहुत स्पीड से चलेंगे। तो ये जरूर है कि हम अपने विचारों को वो पॉजिटिविटी देते हैं, ये प्रैक्टिस जरूर करते हैं, जिसके आधार से हम मन को सहज स्पीड को कम करके सही डाइवर्जन दे सकते हैं और ईश्वर में लगा सकते हैं। जैसे गाड़ी भी बहुत फास्ट जाती है, परंतु अगर हमें टर्न करना है तो स्पीड को कम करना पड़ेगा, और अगर टर्न करते समय स्पीड कम नहीं की तो कहाँ जाके डैश हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए स्पीड कम करना बहुत जरूरी है। तो आज जो नेगेटिव थिंकिंग इतनी बढ़ती गई है, जिसके कारण कितने गलत कर्म हमसे हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण ही है स्पीडी माइंड। अब उसको धीरे जरूर करना है, दैट इज ऑफ कोर्स अ बिग मस्ट, पर कैसे उसको पॉजिटिव थॉट से शक्ति दे ताकि वो धीरे चले और फिर ईश्वर से जुड़ जाए, ये जरूर राजयोग सिखाता है। इसीलिए टू स्पीडी है, ये बहाना दे करके कहें कि हम तो मेडिटेशन कर ही नहीं सकते हैं, ये सोच नहीं हो। फिर कई कहते हैं हम मेडिटेशन तो करना चाहते हैं लेकिन हम पद्मासन नहीं कर सकते, हम ये आसन नहीं कर सकते। हम कहते कोई बात नहीं, नहीं कीजिए, सभी पद्मासन नहीं कर सकते हैं। किनको अगर नी प्रॉब्लम है कहाँ पद्मासन कर सकेंगे, रूमेटिज्म आर्थराइटिस अगर है, जॉइंट पेन्स है, तो पद्मासन करना बड़ा मुश्किल है, कर नहीं सकेंगे। हम कहते कोई बात नहीं, पर पद्म जैसा जीवन तो बना सकते हो, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है, वैसे अपने जीवन को कमल फूल समान बनाओ। संसार में भले रहो पर संसार आप में न रहे, ये शर्त है। क्योंकि इतना बड़ा जहाज भी पानी पर तैर सकता है, चल सकता है, पर शर्त ये है कि पानी नाव में, वो जहाज में ना आए। अगर पानी कहीं कोई सुराख बन गई और वहां चला गया तो इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज जैसा भी डूब सकता है। तो पानी नाव में ना आए, नाव बल पानी पर हो, ये जरूर ध्यान रखना होगा। तो फिर कई कहते हैं कि अच्छा मेडिटेशन के लिए कोई पोस्चर नहीं चाहिए, पर सराउंडिंग्स तो क्वाइट चाहिए ना। हम जहाँ रहते हैं वह बहुत आवाज है, कैसे मेडिटेशन करेंगे, वहां तो बहुत साइलेंस चाहिए। हम कहते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, सुनने के लिए साइलेंस चाहिए। अब आपस में बात कर रहे हैं और बहुत शोरगुल है तो हम सुन नहीं पाएंगे, कितनी आवाज कानों में जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा साइलेंस चाहिए, तो जिसका हम सुनना चाहते हैं उनका सुन सके। लेकिन मेडिटेशन के लिए बाहर की साइलेंस न भी हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं जैसे आप मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, प्रार्थना स्थानों पर जाते हैं, कितनी आवाज होती है। मंदिर में तो बहुत आवाज होती है, घंटे बजते हैं, कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, ढोल बजते हैं, बहुत कुछ होता है। सब कुछ होते हुए भी मन कितना शांत रहता है वहां। क्यों शांत रहता है? क्योंकि वो डिस्टर्बेंस नहीं है, ये तो अंदर के जो संकल्प है ईश्वर के प्रति, वो उद्गार हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो उसके आधार से मन तो शांति रहता है, आवाज हमें डिस्टर्ब नहीं करता। और ही उसके विपरीत अगर आप ऐसे एकदम शांत वाले स्थान पर जाएंगे, शमशान घाट में चले जाइए जहां बिल्कुल एकांत है, कोई नहीं है वहां, आपको डर लगेगा, चलो भाई जल्दी जल्दी यहां से हटो, यहां तो बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस आर वेरी हैवी और मंदिर में वाइब्रेशंस बहुत हल्के हैं, इसीलिए शांति का अनुभव सहज होता है, खाली आवाज है, इसीलिए आवाज डिस्टर्बेंस नहीं लाएगा मेडिटेशन में, क्योंकि अंतर बहुत अनुभव कर रहे हैं, वो आवाज क्यों हमें डिस्टर्बेंस करेगा। इसीलिए वो भी एक बहाना बन जाता है। कई कहते हैं मेडिटेशन तो हम करते हैं, हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ भी योग, कुछ योग सिखाते हैं कि अपने श्वास पर ध्यान दो, लेट इन और आउट, उसी पर कंसंट्रेट करो। हम कहते हैं ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, प्राणायाम करना है, उसके लिए अगर हम श्वास अंदर लेते हैं डीप और फिर अलग अलग जो प्राणायाम है वो हम करते हैं, दैट इज फॉर गुड हेल्थ, नो डाउट, लेकिन मेडिटेशन के लिए तो जरूरी नहीं है। मेडिटेशन तो आप प्रारंभ से भी कर सकते हो, अब उसके लिए खास श्वास पर ध्यान दें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या थॉट्स हम मन में लाएं वो मेडिटेशन सिखाता है। ये श्वास तो नेचुरल प्रोसेस है, और जैसे पॉजिटिव थॉट्स जो बताए जाते हैं वो मन में लाते हैं, तो श्वास की प्रणाली तो और ही स्लो होती जाएगी, नेचुरल है, हो जाएगी, इसलिए वो भी विघ्न नहीं है। कई कहते हैं कि आंखें बंद करके मेडिटेशन हम करते हैं तो मन तो बहुत भटकता है या नींद आती है, क्योंकि ये भी कईयों को प्रॉब्लम होती है, आंखें बंद की तो मन इतना शांत हो जाता है और ब्रेन को संकेत मिलता है कि अभी सोना है, तो नींद आएगी। یا اتنا 100% آپ کا جو امیجینیشن کا دائرہ ہے وہ بڑھ جائے گا. تو ہم کہتے ہیں آنکھیں کھلی رکھے کرو. کئی لوگ آنکھیں کھلی تو رکھتے ہیں پر تراٹک کرتے ہیں, موم بتی جلاتے ہیں یا دیا جلاتے ہیں یا کوئی بندو سامنے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کوئی فزیکل آدھار بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی ویکتی کو یاد کرتے ہو تو کیول اس کا فوٹو رکھ کر تو یاد نہیں کرتے ہو نا, ویسے بھی یاد کر سکتے ہو. تو اسی لیے آنکھیں بھلے کھلی رہے, چلتے پھرتے, کھاتے پیتے, اٹھتے بیٹھتے, ہر کرم کرتے بھی آپ کر سکتے ہو میڈیٹیشن. اور آنکھیں بند ہوگی تو کیسے ہر کرم آپ کر کے میڈیٹیشن کر سکتے ہو, اور کھلی ہوگی تو سب کچھ کر کے بھی آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہو. پھر کئی کہتے ہیں میڈیٹیشن تو کرتے لیکن بہت بورنگ لگتا ہے. تو ہم کہتے ہیں بورنگ کیوں لگتا ہے, کیوں اب جاتے ہیں؟ کہتے بس وہی جاپ کرنا ہے. میڈیٹیشن کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ یہ جاپ کیجئے. اب جاپ جو ہم کرتے اس میں پھر گنتی ملتی ہے کہ اتنی بار کرنا ہے. اب جاپ جو بھی کیا اس کا ارتھ سمجھا ہی نہیں, کیول جاپ کیا تو بورنگ لگے گا, کیونکہ مائنڈ کریٹو ہے, اس کو کریٹیویٹی چاہیے, رچناتمکتا چاہیے, تو اس میں ہم لگ جائیں گے. آج کمپیوٹر میں ہم نیٹ دیکھتے, انٹرنیٹ دیکھتے ہیں, اس میں بہت کریٹیویٹی ہے. تو کریٹیویٹی جب ہم کو ملتی ہے تو اسی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں, دو گھنٹہ چار گھنٹہ کہاں چلے گئے پتہ بھی نہیں چلتا. کمپیوٹر کے آگے جیسے پکڑ کے رکھا ہے کمپیوٹر نے ہمیں, نیٹ کا اتنا پربھاؤ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت بڑھتی جا رہی ہے. پرنتو یہ جتنی بھی انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے اچھی بات ہے, پرنتو وہی ستیہ گیان نہیں ہے. اس لیے گیان تو ہم ایشور سے مانتے ہیں, ہے پربھو اسو ما ست گمیا, وہ گیان دو جو ہمیں اسیہ سے دور کر ستیہ کی اور لے جائے. اگیان اندھکار سے دور کر گیان کا پرکاش دے, تو وہ گیان تو پرماتما ہمیں دے گا. اور وہ گیان جب پرماتم گیان ہم پراپت کرتے ہیں تو من اس میں ایکاگر ہو جاتا ہے. اس لیے من ایکاگر ہونے کے لیے کریٹیویٹی بھی بہت ضروری ہے. پھر کئی کہتے بورنگ اسی لیے لگتا ہے کیونکہ کریٹیویٹی نہیں ہے. اب راج یوگ وہ کریٹیویٹی دیتا ہے, کیا اتنی گہری گیان کی باتیں ہیں, آپ اس کی گہرائی میں چلے جاؤ, اس کا سوروپ بن جاؤ, یہی میڈیٹیشن ہے. اور کئی تو کیونکہ نہیں صحیح پتا تو کہتے نہیں نہیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, ہم نہیں کر سکتے. اور وچتر بات تو یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں, ایجڈ لوگ ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں یوگ مانا یوگا آسن, یہی یوگ ہے. اور کہتے ہیں یہ تو جوانوں کا کام ہے, ہم بوڑھوں کا تو کام ہی نہیں, ہم یوگ ووگ نہیں کر سکتے. اور جوان سمجھتے ہیں اس کے لیے تو یوگی مانا سنیاسی بن جانا پڑے گا, اس لیے یہ تو ہمارے لیے نہیں, یہ تو بزرگوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, ہم تو جوان ہیں, کھاؤ پیو موج کرو. اب یہ دونوں ہی وچار دھارائیں غلط ہے. یوگ تو ہمیں جیون جینے کی کلا سکھاتا ہے, جیون کیسے جیے یہی یوگ سکھاتا ہے. اور اس کے لیے آوشیکتا ہے صحیح روپ سے میڈیٹیشن کو سمجھنے کی. ویویکانند نے بہت سندر شبدوں میں میڈیٹیشن کی پریبھاشا دی. واٹ از میڈیٹیشن؟ میڈیٹیشن از دا مینیفیسٹیشن آف پرفیکشن ود ان. آپ کے بھیتر پرفیکشن ہے اور اس پرفیکشن کو آپ مینیفیسٹ کیجئے, پرکٹ کیجئے, اجاگر کیجئے, جاگرت کیجئے. جو سوئی ہوئی شکتی آپ کے بھیتر ہے, اس بھیتر سوئی ہوئی شکتی کو جگائیے, یہ میڈیٹیشن ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے آپ جیسا سوچیں گے ویسا ہی انوبھو کریں گے, کیونکہ وہ سوچ سے وہ آپ کی انتر کی جاگرتی ہوتی ہے. پرنتو اگر اس سوچ میں نیگیٹیوٹی ہے تو جاگرتی نیگیٹو روپ میں ہوگی. परंतु वो सोच पॉजिटिव है तो जागृति पॉजिटिव रूप में होती है। अब कई कहते हमें तो शांति चाहिए। शांति क्या चीज है? ये तो मन की स्थिति है, और कितनी दूर है शांति हमसे? एक सोच की दूरी पर है। इट्स ओनली वन थॉट अवे, और वो सोच है ही मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसलिए दादी जी ने आपको कैसे ओम शांति भले जोर से कहलवाया, ये अंतर से निकले कि मैं सचमुच वो आत्मा हूं जो शांत स्वरूप हूं। और तीन बार क्यों? क्योंकि मैं स्वयं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं और शांति धाम का वासी हूं। तो जिसका अपना स्वभाव शांति, जिसका पिता परमात्मा शांति का सागर, जिसका धाम शांति का धाम, वो अशांत नहीं हो सकता है। लेकिन हम क्यों कहते हैं हम आज बहुत अशांत हैं? क्योंकि अपने आप को पहचानते नहीं है। इसीलिए क्यों राजयोग नहीं लगता? क्योंकि न खुद को जानते न परमात्मा को जानते। अब राजयोग के द्वारा हमें खुद की भी पहचान मिली और परमात्मा की भी पहचान मिली। तो जब आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाती है, उससे जो शक्ति प्राप्त होती है, वही शक्ति वास्तव में जीवन जीने की कला है। लेकिन इसकी विधि बहुत सरल है, कठिन नहीं है। कई समझते परमात्मा तक पहुंचना माना कोई पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के समान है। तो कई रास्ते हैं, तो कई रास्ते ढूंढते रहते हैं, और फिर जब नहीं समझ में आता है तो कहते हैं हम तो मूंझ गए, बहुत रास्ते ले लिए। तो कौन सा सही रास्ता वही पता नहीं है। समझते सब रास्ते उस तक पहुंचेंगे, लेकिन हम चाहेंगे तो वही ना कि जो रास्ता सहज हो, सरल हो, सुगम हो, शॉर्टकट हो, वही रास्ता पसंद करेंगे। तो राजयोग इज अ रॉयल फॉर्म ऑफ योग, रॉयल मेथड। उस रॉयल मार्ग पर हम चल करके परमात्मा से सर्वोच्च प्राप्ति कर सकते हैं। किसको हम सर्वोच्च प्राप्ति कहेंगे? धनवान बन जाना, नाम मान शान मर्तबा ये सब प्राप्त करना, यही सर्वोच्च प्राप्ति नहीं है, क्योंकि आज है कल खत्म हो सकता है। पर सर्वोच्च प्राप्ति माना जो आत्मा के मूल गुण हैं, उन गुणों को अपने अंदर अनुभव करना, इनसे और ऊंची प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जैसे कोई कितना भी धनवान बन जाए परंतु अगर लोभी है, वो लोभी व्यक्ति तो कंगाल है, चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो। इसीलिए कहावत है लोभी नर कंगाल है। दुख पावत दुख देत, दुख देत दुख पावत, दुख खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुख देता है। लोभी है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए। पर निर्लोभी सदा सुखी ईश्वर हरदम देत। निर्लोभी वो सदा सुखी, क्योंकि उसके अंदर संतोष का ऐसा मूल गुण है, इसलिए वो सिरताज है, वो सर का ताज है संतोष का गुण। और वो तो उनसे धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए परमात्मा हमें वो सर्वोच्च प्राप्ति कराते हैं जिसके आधार से बाकी सब फीका लगता है। तो क्या है राजयोग? ज्ञान योग उसका आधार है। ज्ञान के आधार पर ये योग है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया इस संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, ये एक बेसिस है राजयोग का। इसलिए ज्ञान योग राजयोग से अलग नहीं है। फिर ये सहज है, क्योंकि कोई शरीर को कष्ट देने की भी बात नहीं है। फिर इसके साथ ये बुद्धि योग है, बुद्धि द्वारा मन को दिशा देनी है। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो, क्योंकि सोचने का काम मन का, समझने का काम बुद्धि का, और फिर इंद्रियां, इंद्रियों से कर्म, ये थर्ड स्टेज होना चाहिए। पहले सोचते हैं, फिर समझते हैं, फिर करते हैं। लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियस है ना, अभिमान है, तो सोचना समझना बंद हो जाता है, सीधा करना एक्सटेम्पो, और इतने गलत कर्म कर देते हैं जो बाद में कितना पश्चाताप करना पड़ता है। कर्म कर लिया फिर उल्टा चलता है, उल्टा कैसे चलते हैं, सोच समझ कर कर्म करने की बजाय कर लिया, फिर समझते हैं ये गलत किया, फिर सोचते अभी क्या करें, अभी क्या करें, ये थर्ड स्टेज आ जाती है। और होना चाहिए क्या मुझे करना है, फिर समझना है कि इससे नुकसान होगा या फायदा होगा, फिर करना है। तो ये बुद्धि योग, क्योंकि बुद्धि की शक्ति आज कमजोर हो गई है, जिसके कारण इंद्रियां उत्तेजित हो गई है, इसलिए एक्सटेम्पो कैसे जितने इंद्रियों के रस है उनके पीछे आकर्षित हो रहे हैं, जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, इन इंद्रियों के वशीभूत होके हम उनके पीछे मन भाग रहा है, इसीलिए मन चंचल है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बुद्धि मन को दिशा दे और फिर मन ईश्वर की तरफ जाए, बुद्धि लगाम है। और फिर कर्म करते भी करो, कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म हाथों से हो, मन बुद्धि ईश्वर की तरफ हो। इसीलिए गीता में आता है कर्मणे बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचनम्, कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार हो क्योंकि सोच समझ कर कर रहे हो, लेकिन फल की चिंता मत करो, वो ईश्वर पर छोड़ दो, ये सच्चा कर्म योग है। और फिर जहां ये सच्चा कर्म योग हम करते हैं, ईश्वर पर छोड़ देना माना सच्चा प्रेम ईश्वर के साथ है, जिससे प्रेम होता है उसके लिए ही तो सब करते हैं, अपने लिए थोड़ी करते हैं। माता पिता से पूछो आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना पिता से पूछो कमाते हो किसके लिए, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों के लिए माना बच्चों से कितना प्यार है। अब ईश्वर से उतना प्यार हो जाए तो मन बुद्धि कहीं भटके नहीं। तो भक्ति योग माना सच्चा प्यार ईश्वर से। और फिर किससे संन्यास, कोई घर गृहस्थी का संन्यास नहीं, बुराइयों का संन्यास, विकारों का संन्यास। और फिर समत्व योग, योगा बैलेंस, शीर्षासन करते सिर पर बैलेंस, हम कहते भले वो मत कीजिए लेकिन सिर का बैलेंस जरूर रखिए, नॉट बैलेंस ऑन हेड बट बैलेंस ऑफ हेड। तो इसलिए ये राजयोग के लिए हमें क्या करना होगा, टू बिकम अवेयर ऑफ द सेल्फ, टू बी अ सोल, मैं एक आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संबंध परमात्मा के साथ नहीं है, शरीर का संबंध तो प्रकृति के साथ है, पंच तत्वों के साथ है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जिससे ये शरीर बना उससे संबंध है शरीर का। और खुद को अगर ये शरीर समझते हैं तो वही बातें याद आएगी जो संसार की बातें जो इन पंच तत्वों से संबंधित है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं तो आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते, भगवान ने दिया। अब भगवान ने शरीर तो नहीं दिया, शरीर तो माता पिता के बीच की रचना है, प्रकृति की देन है, लेकिन आत्मा जरूर परमात्मा ने दी, क्योंकि आत्मा का संबंध ईश्वर के साथ है। कोई गुजर जाता मर जाता है तो कहेंगे भगवान के पास गया, अब भगवान के पास गया ईश्वर को प्यारा हो गया, कौन गया भगवान के पास, शरीर तो वहीं पड़ा है। तो आत्मा परमात्मा की प्यारी है, वो आत्मा का संबंध ईश्वर के साथ है। इसीलिए मैं वो आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ, और उस परमात्मा की मैं संतान हूँ। वास्तव में सब संबंध मेरे परमात्मा के साथ है, ये हमें निश्चय हो और उस निश्चय से हम मन बुद्धि उनमें लगाएं। तो तीन कारण हैं जो मन नहीं लगा परमात्मा में, एक तो खुद को नहीं जानते, दूसरा परमात्मा कौन है ये भी नहीं जानते, फिर मन इतना मैला हो चुका है बॉडी कॉन्शियसनेस और नेगेटिव थिंकिंग से, जो परमात्मा को उस मन रूपी पात्र में जगह ही नहीं दे पाएंगे, कैसे लेगी जगह परमात्मा की याद। जैसे दूध को रखने लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, अगर पात्र बर्तन अशुद्ध है, मैला है, खटाई वाला है, गंदा है, और उसमें आप दूध रख दो, पीने के भी योग्य नहीं होगा, खटाई वाला होगा तो फट जाएगा। इसलिए मन का शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी है। अब ये तीनों चीजें राजयोग से हमें मिलती है। इंसान का पिता इंसान ही होगा, जानवर का पिता जानवर होगा। अब मैं आत्मा हूं तो मेरा पिता कौन? परमात्मा। बस इतना सहज है समझना। इसलिए परमात्मा में मन लगाने के लिए कुछ आधार है। हम देखते हैं भले हम कितनी भी शिकायत करें कि मन तो बहुत चंचल है, लेकिन मन चंचल कहते हुए भी उसकी लिमिट्स है, क्योंकि जिनको हम जानते हैं उनमें ही मन जाएगा। जो बात हम जानते ही नहीं, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, तो उसमें मन जाएगा भी नहीं। इसलिए कहा जाता है नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो इन्फॉर्मेशन तो मन जाएगा भी नहीं, आप यू आर हैप्पी। तो इसलिए जहां पहले इंट्रोडक्शन हुआ फिर मन जाएगा, फिर इंट्रोडक्शन के बाद अगर संबंध जुड़ कुछ पता चला कि इनका इनके साथ मेरा संबंध है तो मन और जाएगा। फिर अगर उस संबंध के साथ फिर वो प्रेम जागृत हुआ तो मन और जाएगा, और फिर अगर उससे कुछ प्राप्ति हुई तो मन तो वहां से हटेगा ही नहीं। तो मन को कहीं भी जाने के लिए ये चार आधार हैं: इंट्रोडक्शन, परिचय, संबंध, प्रेम, स्नेह और प्राप्ति। अब ये चारों ही आधार हम परमात्मा से लगाएंगे। आत्मा क्या है उसकी पहचान आपको दी, परमात्मा क्या है उसकी भी आपको पहचान दी। अब ये दोनों का संबंध जो अनादि अविनाशी है, जो टूट चुका है, उसको आज हम जोड़ेंगे, और फिर उनसे ही सच्ची प्रीत रखनी है। प्यार सबसे क्यों नहीं हो, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन अगर ईश्वर से सच्चा प्यार है ना तो सबसे प्यार होगा। ऐसे नहीं इनसे प्यार, इनसे नहीं, इनसे है, इनसे नहीं, पर ईश्वर से प्यार है तो सबसे होगा। क्यों? परमात्मा बीज है। जैसे पेड़ को पानी देना है तो आप पत्ते पत्ते को थोड़ी देते हो, किसको देते हो? बीज को देते हो, और बीज को पानी दिया पूरे पेड़ को मिल जाएगा। तो अगर भगवान से सच्ची प्रीत रखो तो सारी दुनिया से आपकी प्रीत हो जाएगी। कई कहते आई लव एवरी वन इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट माई नेबर, पड़ोसी से प्यार नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या है, उनको ये मिला मुझे नहीं, इसके पास ये है मेरे पास नहीं, तो प्यार कहां से होगा। तो सारी दुनिया से प्यार तो पड़ोसी से क्यों नहीं प्यार, उनसे ईर्ष्या। वास्तव में ये भी सच्चा प्यार कहां हुआ, किसी से भी ईर्ष्या नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं, हर एक आत्मा है, हर एक आत्मा के अंदर कुछ न कुछ गुण है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं मैं ही सब कुछ हूं, ये तो अभिमान हो जाएगा। आई एम एवरीथिंग, ये अभिमान है। कई फिर उसमें हीनता दिखाते हो, आई एम एवरीथिंग नहीं कहेंगे, वो कहेंगे आई एम नथिंग। अभी ये भी अज्ञानता है, ये भी हीनता है, आई एम नथिंग या आई एम एवरीथिंग, ये ईगो है। तो ईगो भी ना हो, आई एम एवरीथिंग ये भी ना सोचे, मेरे समान बहुत है। आई एम नथिंग ये भी नहीं सोचे, क्योंकि मैं तो भगवान का बच्चा हूं। तो हम कहते हैं क्या सोचो, आई एम समथिंग बट आई कैन डू एवरीथिंग। آئی ایم سم تھنگ اینڈ آئی کین ڈو ایوری تھنگ، سیلف کانفیڈینس آ جائے اور اس سیلف کانفیڈینس سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کس کے بچے ہو؟ پرماتما کے بچے ہو. اب یہ تب ہوگا جب ہماری سچی پریت ہوگی پرماتما سے، اور پھر ان سے ہی مجھے پراپتی ہو رہی ہے یہ آتما کو انوبھو ہوگا. اس لیے یہ چار آدھار کے لیے ہمیں آتما کی صحیح پہچان کیا ہے وہ پھر سے ہم دہرائیں گے. میں آتما ایک جوتی ہوں، پرکاش کا پنج ہوں، چمکتا ہوا ایک ستارہ ہوں، گیان، پوترتا، شانتی، پریم، سکھ، آنند اور شکتی، یہ سات مول گن ہیں آتما کے، کور ویلیوز، انیٹ ویلیوز، جس کے آدھار سے ساری دنیا کے ویلیوز آدھارت ہے، وہ میرے اندر ہے، میرے اندر سماہت ہے. ان کو مجھے کہیں سے لینے نہیں ہے، یہ سوچنے سے انوبھو ہوتے ہیں. آتما پریم سوروپ ہے، پریم مانگا نہیں جاتا ہے، آتما خود پریم سوروپ بن کے سب کو بانٹے من وچن کرم سے. اور یہ گن ایسے ہیں جتنا بانٹیں گے اتنے بڑھیں گے. اور پھر اس شریر میں تو میں ٹیمپرری ہوں، میرا پرماننٹ ستھان تو پرم دھام ہے، شانتی دھام، مکتی دھام. اور میں آتما اس سرشٹی رنگ منچ پر ایک ایکٹر بن کے آئی ہوں پارٹ بجانے، اور جو میرے اندر گن ہے وہ اپنے کرم میں، وچن میں، من سے میں پرکٹ کر کے سب کو بانٹوں، یہی میرے جیون کا لکشیہ ہو. اور پرماتما کی میں سنتان ہوں، وہ بھی آتما ہی ہے، لیکن وہ بھی ایک جوتی ہے، پرکاش کا پنج ہے، چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے. میں آتما شان سوروپ، پریم سوروپ، آنند سوروپ ہوں، وہ ساگر ہے ان گنوں کا، شانتی پریم آنند کا ساگر ہے. اسی لیے کہتے ہیں آتما پرماتما کا انش ہے. انش کا مطلب کہ پرماتما جیسی ہی کوالٹی ہے آتما کی، کوانٹیٹی میں انتر ضرور ہے، وہ ساگر ہے، میں آتما سوروپ ہوں. تو وہی گن ہے جو ایشور کے گن ہے، وہ میرے بھی گن ہیں. اس لیے مجھے مانگ کر کے نہیں لینے ہیں، مانگنا نہیں ہے ہے پربھو شانتی دو، بھکھاری نہیں بننا ہے. ایک گیت ہے، تو پیار کا ساگر ہے، تیری ایک بوند کے پیاسے ہم. واسطو میں بوند کے پیاسے کیوں بنے؟ ہم پورا ساگر پی سکتے ہیں، بھگوان نے کھلی چھٹی دی ہے. بوند کے پیاسے کیوں بنتے ہو؟ ساگر کے کنارے جا کر ساگر کو کہیں گے کہ ساگر ایک بوند ہی دو، وہ تو پورا کھلا پڑا ہے. سورج کے سامنے جا کے کہیں گے کیا ہے سورج، ایک ہی کرن دو مجھے بس، وہ تو پوری کرنیں لٹا رہا ہے مجھ پر. اسی لیے ساگر پرماتما کی ہم سنتان ماسٹر بن سکتے ہیں، ادھیکاری بن سکتے ہیں، بھکھاری نہیں بننا ہے. تو راج یوگ ہمیں راجا بناتا، مانا ادھیکاری بناتا ہے. جو پرماتما کے گن ہیں وہ آتما کے بھی گن ہیں. اسی لیے پہچانو اپنے گنوں کو، پہچانو اپنے دھام کو. جو پتا پرماتما کا گھر ہے وہ مجھ آتما کا بھی گھر ہے. بھگوان سے موکش مانگنے کی ضرورت نہیں، بھگوان مجھے اس سنسار میں جینا نہیں ہے، رہنا نہیں ہے، بس بھگوان مجھے مرنا ہے، بھگوان مجھے اپنے پاس بلا لو. کئی ایسے دکھی ہو کے بھگوان کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دکھی ہو کے بھگوان کو مت کہو کہ بھگوان مجھے بلا لو، من سے چلے جاؤ، وہ آپ کا ہی گھر ہے. جو پتا پرماتما کا گھر ہے وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ ادھیکاری ہو اس گھر کے. تو من سے وہ ایک سیکنڈ میں اس پرم دھام میں چلے جاؤ، وہ اکھنڈ جوتی کے مہتتو میں جو چمکتا ہوا ایک دھام ہے، سنہرا لال پرکاش، میں آتما اسی دھام کی واسی ہوں. تو اسی لیے پرماتما کو کے ساتھ جو سمبندھ ٹوٹ گیا ہے وہ جوڑنے کی ودھی کیا ہے؟ تین باتوں کی سمانتا. جیسے ٹیوننگ کر کے ہی ہم کوئی ریڈیو اسٹیشن پراپت کر سکتے ہیں، کوئی چینل چاہیے، اسی وہ جو اینگل ہوتا ہے اسی پر سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو پرماتما سے آتما کے تین ایسی باتیں ہیں جس میں سمانتا ہے. आज तक वो समानता तो हमने लाई नहीं, कितना अंतर समझ लिया ही, भगवान तुम तो बहुत ऊंचे हो और मैं तो नीच हूं, आप तो नाम रूप से न्यारे हो और मैं फलाना नाम रूप धर्म जाति भाषा इतने हदों में फंसे पड़े हैं। हे भगवान, आप तो ऊंचे से ऊंचे हो, सातवें आसमान में रहने वाले, मैं तो संसार का प्राणी हूं, आप इतने पावन, मैं इतना पतित, मिलन कैसे होगा? मिलन के लिए समानता चाहिए, समानता चाहिए। और समानता क्या है? जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो भी एक आत्मा है लेकिन परम है, ज्ञान गुण शक्तियों में परम है, इसलिए परम आत्मा कहते हैं। है तो वो भी एक आत्मा जिसका ही स्वरूप ज्योतिर्लिंगम नाम से याद किया जाता है या पूजा की जाती है। लिंग का मतलब है चिन्ह, सिंबल ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप। पर वो परम ज्योति है क्योंकि परम अर्थात ऊंचे से ऊंचा, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो आत्मा का अनादि अविनाशी संबंध उसके साथ है, आत्मा भी ज्योति बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु। और फिर घर एक ही है, हम भगवान के घर से ही आए हैं, भगवान के घर जाना है, ये आत्मा कहती है ना। और फिर एक जैसे ही गुण है, जो ईश्वर के गुण है आत्मा के भी वही गुण है। अब जब गुणों की समानता है, घर की समानता है, स्वरूप की समानता है, अब योग लगाना बहुत सहज है। तो चार स्टेजेस में हम ये राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। पहली स्टेज है इनिशिएशन, आई इनिशिएट माई माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स ऑफ द सेल्फ एंड द सुप्रीम। फिर मेडिटेशन माना वो रिलेशनशिप जोड़ करके उनके समान स्थिति बनाने की कोशिश करना। और तीसरा फिर एक एक गुण में एकाग्र हो जाना। और चौथा वो अनुभव अपने अंदर करना। ये राजयोग एक यात्रा के समान है, जैसे एक यात्री यात्रा पर जाता, उसके सामने एक मंजिल होती है, कहां मुझे पहुंचना है। तो परमात्मा से मिलना यही लक्ष्य नहीं है, मिलन तो फर्स्ट स्टेज है, पर अंतिम स्टेज मिलन की बात नहीं है, लेकिन पिता परमात्मा के समान बन करके उनके गुणों का स्वरूप बन जाना, परमात्मा को अपना साथी बनाना इस यात्रा में। और जिसका साथी भगवान है उसको दुनिया की कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकते। तो कैसे हम राजयोग करते हैं, उसमें इनिशिएशन क्या है? मन को बुद्धि के द्वारा दिशा देना, इट्स अ कॉन्टेम्पलेशन ऑन द इनर सेल्फ एज अ पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी वेव्स। मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश पुंज हूं, चमकता हुआ एक सितारा हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, इस शरीर से पहले भी थी, शरीर के बाद भी रहूंगी, मुझे न कुछ कोई चीज काट सकती न जला सकती, प्रकृति के तत्व शरीर को नष्ट कर देंगे पर आत्मा को नहीं कर सकते, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अब ये आत्मा का चिंतन, फिर परमात्मा का चिंतन, मैं आत्मा किसकी संतान हूं, ये मन रूपी पात्र को शुद्ध करना है पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमधाम वासी है, मैं भी वहां की वासी हूं। अब जैसे ये मन में सोच लाते हैं, बुद्धि दिशा देती है मन को, तो मन धीरे धीरे परमात्मा में लगने लगता है, स्वच्छ हो जाता है। और फिर जो मेडिटेशन की स्टेज है, इट इज कॉन्टेम्पलेशन ऑन गॉड द सुप्रीम बीइंग, द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी इन ऑल रिलेशनशिप्स। मेरे माता पिता बंधु सखा स्वामी सद्गुरु साजन सब संबंध मेरे परमात्मा के साथ है। किसी देहधारी व्यक्ति के साथ सर्व संबंध नहीं होते हैं। एक माँ होगी माँ ही होगी, पिता होगा पिता ही होगा। पिता माँ का पार्ट नहीं बजा सकता, न माँ पिता का पार्ट बजा सकती है। हर सब अलग अलग संबंध है, लेकिन परमात्मा के साथ सब संबंध इट्स ऑल इन वन, क्योंकि परमात्मा ने वो कर्तव्य सब संबंधों के आत्मा के साथ किए हैं। इसलिए आत्मा को वो स्मृति है, आत्मा को वो अनुभव है कि कैसे परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी सद्गुरु साजन, यहाँ तक कि हम कहते हैं परमात्मा हमारा बच्चा भी है। कोई कहे कि बच्चा नहीं है इसको बड़ा दुख होता है, बच्चा नहीं है, हम कहते भगवान को बना लो ना बच्चा, भगवान को बना लो, कभी दुखी नहीं करेगा आपको बेटा आपका। इंसान जो बच्चा बना वो दुखी भी कर देगा आपको, भगवान कभी नहीं दुखी करेगा। इसलिए सब संबंध परमात्मा से, अभी वो संबंध कैसे सब ईश्वर के साथ अनुभव हो ये फिर अलग टॉपिक है, वो आप सेवा केंद्रों पर जाकर के समझना। और आप महसूस करेंगे कि जब हम परमात्मा से सब संबंध जोड़ देते हैं तो कितनी आत्मा को प्राप्ति होती है, और उस प्राप्ति के आधार से हम कितनी गहराई का अनुभव उनका कर सकते हैं। हम उनसे ही बातें करते हैं, भगवान से ही बातें करते हैं, और हमें विश्वास है कि अगर हम परमात्मा से बातें करते हैं तो परमात्मा कभी भी हमारी जो कुछ हमने अपनी सीक्रेट से उनको बताई वो किसी और को नहीं बताएंगे। यू विल नेवर फील लोनली, नेवर फील अलोन, उनका जवाब भी आपको मिलेगा बहुत कुछ। ये और अलग टॉपिक है, क्या क्या कैसे कॉन्वर्सेशन हम भगवान से करते हैं, जवाब भी मिलेगा, संबंध जुड़ जाएगा उनके साथ, और फिर उनमें विश्वास भी रखिए। विश्वास का मतलब ये नहीं अंधविश्वास, अंधविश्वास हमको ईश्वर से दूर करेगा, लेकिन परमात्मा से सच्चा प्यार रख के उन पर विश्वास हम करें और उनके साथ शेयर करें। कभी भी आपका मन उदास नहीं होगा, कोई अगर बहुत बोझ लग रहा है उनको अर्पित कर दो। वैसे भी हम गाते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, जीत तुम्हारे हाथ में हाथ तुम्हारे हाथ में, वो जीवन का भार सौंपना सीखो, सब कुछ मुझे ही करना है ये जरूरी नहीं है। और वो विश्वास अगर सचमुच है ईश्वर में, परमात्मा हमारा मार्ग इतना सरल कर देता है जैसे फूल बिछा देता है, कांटे खत्म, ये अनुभव होता है। और फिर इतनी सिक्योरिटी की महसूसता होती है क्योंकि हम अकेले नहीं है, हम परमात्मा के साथ है, जिसको राखे साइयां मार सके न कोई, इतना विश्वास है, नो फियर, सिक्योरिटी की अनुभूति होती है। परमात्मा एक ऐसा कवच बनकर हमारे साथ रहते हैं जो हमें कुछ भी बाह्य प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर इतनी शक्ति का अनुभव, ये सब राजयोग के अभ्यास से हम कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे अनुभव करते हैं जैसे परमात्मा से प्रीत जुटती जाती है, परमात्मा के एक एक गुण में हम खो सकते हैं। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य भी है वो कल्याणकारी भी है और गुणों का सागर भी है। तो एक एक गुण की गहराई में, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड, ब्यूटिफुल थिंग्स अट्रैक्ट अस नो डाउट। तो सबसे सुंदर तो परमात्मा है, मनुष्यों की सुंदरता या चीज की सुंदरता वस्तु की सुंदरता वो तो चार दिन की चांदनी है, हर चीज सतो रजो तमो से गुजरनी है, ये प्रकृति की चीज है। लेकिन परमात्मा तो अप्राकृतिक है, आत्मा भी अप्राकृतिक है, आत्मा भी कितनी सुंदर है, आत्मा के अंदर भी वो सद्गुण है, उसको पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो। और फिर जब मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर में समा जाऊं, इसको ही कहते आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे कोई किसी के प्यार में खो जाता है, उसको कहते हैं लॉस्ट इन लव। लॉस्ट, मनुष्यों का मनुष्यों से अगर दैहिक प्यार है, शारीरिक प्यार है, वो तो काम वासना है या तो मोह है, वो तो फॉल इन लव है, वो तो गिरते हैं, उसमें चढ़ते नहीं है, गिरते हैं। वो दिल उसको क्या देते हैं, दिल के हजार टुकड़े कर देता है ना, ऐसे ही कहेंगे ना, कहते ना दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ वहां गिरा, क्योंकि दिल में अनेकों को बसा दिया है। पर भगवान को अगर सचमुच दिल में बसा दो तो भगवान ये दिल हमारा इतना मजबूत कर देगा जो जन्म जन्म परमात्मा से आत्मा को प्राप्ति हो सकती है। चाहिए ये कि अनेकों को दिल देना है, किसको दिल देना है, दिल दिया और दर्द लिया, यही है दुनिया की हालत, कलयुगी दुनिया की हालत। अब भगवान को दिल देके देखो, और जब भगवान को दिल देंगे तो इतना दिल मजबूत हो सकता है जो कोई भी मेरे सामने परिस्थिति आए मैं उसमें हलचल में नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरा साथी भगवान है। अब ये हमारी यात्रा है, ईश्वर को साथी बना करके आगे चलना, परमात्मा के एक एक गुण में खो जाना। इसी एकाग्रता की शक्ति को अगर हम अनुभव कर सकते हैं तो हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म होते हैं, अनेक जन्मों के पाप। जैसे सूरज की किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से हम एकाग्र करते हैं फोकल पॉइंट पर, वहां कागज रख दें तो जो सूरज का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन उस कागज पर पड़ता है, इतना शक्तिशाली होता है, वो कागज को जला देता है। सोलर पावर क्या है, सूरज की किरणों को हम स्टोर कर सकते हैं, इतनी शक्ति है। तो कैसे हम राजयोग के द्वारा वो सच्चा पावर हाउस परमात्मा से हम शक्ति स्टोर कर सकते हैं आत्मा के अंदर जो आज खाली हो गई है, कैसे? शिव बाबा आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं। शांति दो नहीं, हूं, इट्स एन अवेयरनेस, इट्स अ रियलाइजेशन कि मैं वही हूं जो मेरे पिता का गुण है, और जैसे उस गुण में मैं समा जाऊंगी महसूस होगा वो शक्ति के रूप में मुझ आत्मा में आ गई और अनेक जन्मों के पाप भस्म हो गए। इसीलिए भगवान ने कहा तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का वायदा है, पर शर्त ये है कि हम उनमें अपना मन लगाएं, उस परम ज्योति में, और फिर उससे आत्मा की प्यूरिफिकेशन होती है। और ऐसे महसूस होगा व्हेन वी फोकस आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट ऑन द लाइट ऑफ गॉड वी कैच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुप्रीम बींग्स क्वालिटीज लाइट एंड माइंड इन दैट साइलेंस एंड स्टिलनेस ऑफ परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन इम्प्यूरिटीज आर बर्न्ड। तो इसीलिए ऐसे नहीं कि मन को खाली रखना है, पर मन को भरपूर करना, इतना भरपूर हो गया जो और कोई सोच चल ही नहीं सकता है। एक होता है खाली पेट, मेरे सामने भोजन है लेकिन नहीं, मेरा उपवास है, मेरा व्रत है, खाना नहीं है, मुख में पानी आ रहा है और खाना नहीं है। मन को शून्य करना है पर शून्य होता नहीं। और दूसरा होता इतना भरपूर हो जाऊं, इतना फुल हो जाऊं जो और कुछ पढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है। तो क्या पसंद है, खाली मन या इतना भरपूर परमात्मा के प्यार में हो जाऊं जो और कहीं बुद्धि जाए ही नहीं। ये वास्तव में एकादशी है, एक का दस पर विजय, ये अग्यारस है, सच्चा मन का रस जो अग्यारवा रस है, जो दस पांच इंद्री ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री से ऊपर चला गया, वो आत्मा का रस। और वो रस अगर एक बार चख लिया तो ये सारी जो आकर्षण, जो दुनियावी आकर्षण, जो विकृतियां पैदा कर रही है, उन सब से आत्मा न्यारी बन जाएगी, यही हमें राजयोग सिखाता है। और इसी को ही हम सच्ची रियलाइजेशन कहते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ एनर्जी फ्लोइंग इनटू द इनर बीइंग। और ये इनर बीइंग में अनुभूति हुई, योर बैटरी विल बी चार्ज्ड। आत्मा भी एक बैटरी के समान है, उस पावर हाउस से फुल चार्ज ले लेती है। और ये सबसे अच्छा टाइम है सुबह का समय, जैसे सवेरे सवेरे आप अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लेते हो, फिर दिन भर काम करती है। इसी प्रकार उस परमात्मा से, पावर हाउस से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कर लेते हैं, और कैसे हमारे अंदर वो शक्ति हो आती जाती है, कैसे वो सेल्फ अवेयरनेस आई, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन किया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ एनालिसिस है, निरीक्षण है, विश्लेषण है, फिर सेल्फ कंट्रोल है, आत्म संयम करते हैं, कोई भी गलत कर्म विचार वाणी से हम मुक्त रह सकेंगे। और फिर सेल्फ रियलाइजेशन विल लीड टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। और जहां सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट फार अवे। इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस, विजन, एटीट्यूड, एक्शन, स्टेज, एटमॉस्फियर विल डेफिनेटली चेंज द वर्ल्ड। पहले स्व परिवर्तन, फिर परिवार, समाज, देश, विश्व। इट्स नॉट अ बिग थिंग। और अगर ये मैं स्टार्ट करूं विद द फर्स्ट स्टेप, तो हम सहज परमात्मा के सहयोगी बनकर इस संसार से नेगेटिविटी खत्म करके फिर से इस कलयुग को बदलकर सतयुग बना सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए अपने अंतर के विचारों को परिवर्तन करें। जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को फुल स्टॉप लगा दें, अपनी पॉजिटिविटी को जागृत करें। आत्मा की पॉजिटिविटी क्या है कि मैं इस देह से न्यारी एक अजर अमर अविनाशी चेतन सत्ता आत्मा हूं, एक ज्योति हूं। यह शरीर तो एक वस्त्र है जिसको मैंने धारण किया है, अब इनसे न्यारा होकर के मैं पॉजिटिव एनर्जी वेव्स अपने अंदर भरूं और फिर ट्रांसमिट करूं और वातावरण को इतना ही शुद्ध बनाएं। तो चलिए इस प्रैक्टिस को हम करेंगे कुछ 5 मिनट के लिए। सीधा बैठेंगे, ये लाल प्रकाश हमें संकेत देता है, एक तो नेगेटिव को स्टॉप करो, सिग्नल है स्टॉप, और दूसरा डाइवर्ट करो इस गोल्डन रेड कलर, येलो स्टैंड्स फॉर डाइवर्जन, रेड स्टैंड्स फॉर स्टॉप। और ये आत्माओं का धाम, परम धाम है, अखंड ज्योति का एक महतत्व, गोल्डन रेड सेल्फ एफल्जेंट लाइट, परम धाम, वो ब्रह्म महतत्व, वो मुझ आत्मा का सच्चा घर है, शांति धाम। मैं आत्मा वहीं की वासी हूं, मैं आत्मा मन और बुद्धि से पंच तत्वों से पार उड़ जाऊं, मन और बुद्धि आत्मा के दो पंख हैं और आत्मा पंछी पंच तत्वों से पार छठे तत्व में पहुंच जाए। उस अखंड ज्योति के महतत्व में, जो सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व है, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर परमात्मा के सम्मुख हूँ। मन रूपी आँख परमात्मा को देखिए, जो रूप में ज्योतिर्बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान अनंत है, बेअंत है। और मैं आत्मा शिव पिता की संतान, जो सर्व गुणों का सागर है, मैं आत्मा सर्व गुणों के स्वरूप हूँ। शिव पिता, आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। खो जाइए शांति के सागर में, समझ दीजिए अपने आप को बेहद शांति में। भरपूर हो जाइए शांति की शक्ति से। परमात्म प्यार का अनुभव कीजिए, परमात्मा मुझ पर सच्चा प्यार बरसा रहा है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा का सानिध्य पाकर मैं आत्मा भरपूर हो गई। जो पाना था वो सब कुछ पा लिया, एक हल्कापन न्यारापन महसूस हो रहा है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। अनुभव कीजिए अपने वास्तविक स्वरूप को, शिव पिता से मेरे सर्व संबंध है, शिव पिता ही सर्व गुणों के सागर है, मैं आत्मा उनकी संतान सर्व गुणों की स्वरूप हूं, अब इसी स्वरूप का अनुभव कर आत्मा वापिस लौटे, फिर से कर्म क्षेत्र पर कर्म करने लिए। तो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ होगा, कुशल होगा, यही जीवन जीने की कला है। यह जन्म भी सफल और जन्म जन्म सफल।